चैप्टर 10। अब आगे। वहीं रूही जो दरवाजे की तरफ जा ही रही थी, रुद्र की बात सुनकर वे रुक जाती है और रुद्र की तरफ पलटकर बोली, तुम्हें क्या लगता है, तुम कुछ भी फालतू बकवास करोगे और मैं तुम्हारी बात मान लूंगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी और ना ही मुझे तुम्हारे इन पागलों जैसी बातों में कोई इंटरेस्ट है। इतना बोल वे दरवाजे की तरफ चली जाती है और दरवाजे के पास पहुंच दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगती है, पर दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। वे अपनी पूरी ताकत लगा दरवाजा खोलकर देख लेती है, पर इतनी कोशिशों के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता। इसी तरह कोशिश करते करते 10 मिनट बीत जाते हैं, लेकिन दरवाजा था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उसे अपने कमर पर दो हाथ महसूस होते हैं, जिसे महसूस कर रूही डर जाती है और उसके हाथ दरवाजे के हैंडल पर कस जाते हैं। वहीं रुद्र रूही के कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, उसके कंधे पर अपनी चिन रखते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, मेरी इनोसेंट रूह, टाइम बहुत पहले ही खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें 5 मिनट एक्स्ट्रा दिया, पर तुम उसमें भी नाकाम रहीं। अब रूह तुम्हारी सजा का टाइम शुरू करे। रुद्र की बात सुनकर रूही डर जाती है, लेकिन फिर भी खुद को छुड़ाते हुए बोली, देखो मुझे लगता है तुम्हें इलाज की सच में जरूरत हो। तुम ये कैसी पागलों जैसी बातें किए जा रहे हो, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, फिर भी तुम मेरे साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हो। आखिर मेरी गलती क्या है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे इस तरह से परेशान कर रहे हो? रूही की बात सुनकर रुद्र रूही को पलट अपने सामने करते हुए रूही के गालों पर हाथ रख उसके चेहरे को सहलाते हुए पागलों की तरह बोला, रूह तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी है कि तुम मेरे सामने आई। तुम्हारी ये खूबसूरत हल्की ग्रीन आंखें, तुम्हारी ये खूबसूरत पिंक होंठ, तुम्हारी ये खूबसूरत रेशमी बाल, तुम्हारी ये नेचुरल खुशबू, सब कुछ मुझे तुम्हारी ओर खींचता है। रुद्र की बातों को सुनकर रूही रुद्र का हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए बोली, बंद करो अपनी पागलों जैसी बातें और हटाओ मेरे चेहरे से अपने हाथ, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। वहीं दूसरी तरफ दिशा, जो कब से एक ही जगह खड़ी रूही के आने का इंतजार कर रही थी, रूही को ना आता देख वे खुद से ही बोली, पता नहीं ये रूही कहाँ रह गई, इतनी देर हो गई है, पता नहीं चाय देने गई है या खुद वहां बैठ खाना बनाने। मैं एक काम करती हूँ, खुद देख कर आती हूँ कि ये रूही आखिर रह कहाँ गई। इतना बोल वे लिफ्ट की ओर जाने लगती है, तभी उसे एक रूम से कुछ गिरने की आवाज़ आती है, जिसे सुन दिशा उस तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद जब वे एक कमरे के बाहर पहुँच खुद से कहती है, आवाज़ तो यहीं से आ रही थी, पता नहीं किसका कमरा होगा, क्या मेरा अंदर जाना सही होगा। वे ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी नज़र कुछ गिरे हुए फाइलों पर पड़ती है, क्योंकि दरवाज़ा हल्का खुला हुआ था, इसलिए दिशा की नज़र उन फाइलों पर पड़ जाती है, जिसे देख दिशा ना चाहते हुए भी दरवाज़ा खोल अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही दिशा की नज़र उस शानदार कमरे पर जाती है, जिसे देख एक पल के लिए दिशा खो ही जाती है, क्योंकि ये सब दिशा के लिए बिल्कुल किसी सपने की तरह ही था। वे देखती है कि उस आलीशान कमरे में एक एक चीज अपनी जगह पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रखी हुई है, यहाँ तक कि वहाँ रखी हर एक चीज काफी ज्यादा यूनिक और महंगी नजर आ रही थी, जिसे देख दिशा खुद से बोली, मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से इन फाइलों को अपनी जगह रख चली जाती हूँ, वरना गलती से भी मुझसे कुछ टूट गया और इन लोगों ने मुझसे पैसे मांग लिए तो मैं क्या करूँगी। इतना बोल वे जैसे ही फाइल उठाने के लिए झुकने वाली थी, तभी बाथरूम का डोर ओपन होता है और वहाँ से देवांश अपनी कमर पर सिर्फ एक तौलिया बांधे बाहर निकलता है। तभी उसकी नज़र दिशा पर पड़ती है और वे दिशा को देख शौक होते हुए बोला, मिस दिशा, आप यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? इतना बोलते बोलते देवांश दिशा के करीब आ गया था। वहीं दिशा, जो एक पल के लिए देवांश के परफेक्ट बॉडी को देख खो चुकी थी, देवांश के बोलने पर वे होश में आती हैं और देवांश को अपने करीब देख दिशा तुरंत दूसरी तरफ पलटते हुए बोली, सॉरी सर, जो मैं इस तरह आपके कमरे में आ गई, पर मुझे नहीं पता था कि ये आपका कमरा है, वे तो मुझे यहाँ कुछ गिरने की आवाज़ आई तो मैं यहाँ देखने चली आई। दिशा की बात सुनकर देवांश उसे देखते हुए कहता है, ठीक है, तुम जब यहाँ आ ही गई हो तो ये फाइल उठा दो। देवांश की बात सुनकर दिशा अपना सर हाँ में हिला बिना देवांश की तरफ देखे नीचे बैठ फाइल उठाने लगती है। वहीं देवांश जब देखता है कि दिशा उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, तो वे फिर से दिशा से सवाल करते हुए बोला, वैसा मिस दिशा, आपने बताया नहीं कि आप मेरे घर में क्या कर रही हैं? देवांश की बात सुनकर दिशा बोली, सर वे मैं अपनी फ्रेंड रूही के साथ आई हूँ, मेरी फ्रेंड रूही आपकी बहन परी की दोस्त हैं, तो वे यहीं आ रही थी, तो वे मुझे भी यहाँ जबरदस्ती ले आई, पर सर अगर मुझे पता होता कि ये आपका घर है तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। देवांश जो सोच रहा था कि दिशा उसकी तरफ देखकर बात करेगी, मगर उसने उसकी तरफ देखा तो नहीं, लेकिन उसकी बातें सुनकर देवांश के हाथों की मुठ्ठियाँ कस गई और वे आ सीधा दिशा के पीछे खड़ा हो गया। वहीं दिशा फाइल उठा जैसे ही खड़ी होकर मुड़ती है, वैसे ही सीधा जाकर देवांश के खुले सीने से टकरा जाती है और गिरने के डर से देवांश के कंधे को पकड़ लेती है। वहीं दूसरी तरफ नीचे हॉल में परी और अर्जुन अब भी आराम से सोफे पर बैठे हुए कुछ ना कुछ खाए जा रहे थे, तभी वहां कामना आ जाती है। वे परी और अर्जुन से खाने की प्लेट ले खुद खाते हुए बोली, तुम लोग बस भी करो, कितना खाओगे, अगर इसे ही खाकर पेट भर लोगे तो कुछ देर बाद खाना क्या खाओगे। कामना की बात सुनकर अर्जुन उनसे प्लेट वापस लेते हुए बोला, आप पर भी आपकी कही हुई बात अप्लाई होती है। इतना बोल वे फिर से खाने लगता है। वहीं कामना अर्जुन को गुस्से में देखने लगती है, क्योंकि ये लड़का हमेशा उसे उल्टा जवाब ही देगा था। तभी वहां सुमन आ जाती है और अर्जुन से प्लेट ले कामना को दे अर्जुन को डांटते हुए बोली, अर्जुन ये क्या तरीका अपने के बड़ों से बात करने था,
वैसे भी तुम सबसे ये सब खा रहे हो, अब तुम कुछ भी नहीं खाओगे, सीधा खाना खाओगे। सुमन की सुन परी हंसने लगती है। एक तरह से वे अर्जुन का मजाक बना रही थी, जैसे वे कहना चाहती हो कि तू इसी लायक है। वहीं अर्जुन ये देख मुंह बना लेता है और इशारे से ही कहता है, दी एक दिन आपको भी इसी तरह डांट पड़ेगी, फिर मैं आपके भी ज्यादा हंसूंगा। वहीं सुमन उन दोनों को देख बोली, रूही और दिशा कहाँ है? इतना टाइम हो गया, वे मुझे कहीं दिख नहीं रहे हैं।
अर्जुन जो परी को आंखों ही आंखों से वार्निंग दे रहा था, सुमन को रूही के बारे में पूछता देख उसके कान खड़े हो जाते हैं।